मेरे नौजवान साथियों नमस्कार। AFAIS के आज 29 नवंबर 2019 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आप जानते हैं कि आज शुक्रवार है और शुक्रवार को मैं कुछ आप सबको सूचनाएं दिया करता हूं। तो सूचनाएं इस तरह से हैं कि शनिवार और रविवार को ये जो डेली ऑडियो लेक्चर है ये नहीं आएगा, लेकिन प्रेस क्लिपिंग्स यानी कि अखबार की जो कटिंग्स होती हैं वो आप सबको कल एज इट इज़ ही मिलेंगी। और योजना के दो आर्टिकल्स आपको मिलेंगे, एक हिंदी में एक इंग्लिश में, और इसी तरह से कुरुक्षेत्र के भी दो आर्टिकल्स आपको मिलेंगे, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। और साथ ही आप सबकी प्रैक्टिस के लिए हम लोग एक साप्ताहिक प्रश्न उपलब्ध कराते हैं। मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर एक क्वेश्चन होता है जिसके आपको उत्तर लिखने होते हैं, और ये दोनों ही भाषाओं में अवेलेबल कराए जाते हैं आपको, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। साथ ही साथ हमारे जो क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनके पास स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाएगा। दोस्तों अब आज के मुख्य विषय के तहत मैं जो बात आप सबसे करूंगा वह सब्जेक्ट होगा गठबंधन की सरकार या गठबंधन सरकार, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं कॉलिशन गवर्नमेंट। लेकिन आइए इससे पहले जो कुछ छोटी छोटी जो खबरें हैं उन्हें देख लेते हैं। अखबारों में भी आप लगातार कुछ दिनों से पढ़ रहे होंगे एक शब्द है, वो है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, NBFC। अखबारों में इसके बारे में खूब आ रहा है। देखिए मैं बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, मैं आपको अपनी नीति बता दूं यहां कि क्योंकि हो सकता है कि जैसे इस विषय के बारे में मैंने इससे पहले चर्चा नहीं की, तो अब आपके दिमाग में दो धारणाएं बन सकती हैं। पहला तो यह है कि मैं इसे महत्वपूर्ण ही नहीं मान रहा हूं इसलिए मैंने चर्चा नहीं की। दूसरा आपके दिमाग में यह भी धारणा बन सकती है कि यह महत्वपूर्ण तो है लेकिन मैंने महत्वपूर्ण नहीं माना है, तो मैं कहीं कुछ आप से मिस करवा रहा हूं, मैं कुछ चीजें छोड़ रहा हूं। तो मैं इसके बारे में थोड़ी सी अपनी नीति बता दूं। नीति मेरी यह है मित्रों कि जैसे घटनाएं तो घटती ही रहती हैं, NFBC की जो आपके NBFC की भी जो चर्चा हो रही है वो काफी समय से हो रही है, लेकिन मैं उस समय की प्रतीक्षा करता रहता हूं जब मुझे ये लगता है कि नहीं अब ये जो घटना है ये मैच्योर हो चुकी है यानी पक गई है और इसका स्वरूप इस तरीके का बन गया है कि अब एग्जामिनेशन की दृष्टि से अब ये महत्वपूर्ण मालूम पड़ने लगा है। अदरवाइज ठीक है ठीक है, पकने दीजिए, बाद में फिर मैं उसे अपने इस डेली ऑडियो लेक्चर में ले लेता हूं, ये मेरी पॉलिसी है। तो देखिए जहां तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बारे में बात थी, लंबे समय से ये चर्चा चली आ रही थी, लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि नहीं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके पास होनी ही चाहिए, और ये जो जानकारी है ये मुझे प्री एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट लग रही है। और प्री एग्जामिनेशन का मतलब है कि उसके बारे में आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी हो जाए, ज्ञान की बात मैं नहीं कह रहा हूं, बेसिक जानकारी हो जाए। तो बेसिक जानकारी क्या है, इसके शब्द हैं देखिए गैर बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, इसका मतलब है कि ये बैंक तो नहीं है, बैंक तो नहीं है। अब बैंक अगर होता तो क्या करता, बैंक का मेन काम क्या है, बैंक में आप जाइए अपना पैसा जमा करा सकते हैं, है ना, अकाउंट खोल करके आप पैसा जमा करा लीजिए और पैसा आप निकाल सकते हैं, या फिर बैंक से आप ऋण ले सकते हैं। बैंक की मुख्य जो गतिविधियां हैं वो ये हैं, ठीक है, वो दूसरी गतिविधियां भी करने लगे वो बात अलग है, लेकिन मूल रूप से बैंक हम इसे कहते हैं। तो ये काम तो नहीं कर रहे हैं, जो काम बैंक कर रहे हैं वो काम ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनका जो काम है वो वित्त का ही है, फाइनेंस का है। होता क्या है कि अगर बहुत दिमाग में चीजें स्पष्ट नहीं है तो हम धन और वित्त दोनों को एक ही मान लेते हैं, ये दोनों एक ही हैं, क्योंकि वित्त का संबंध भी कहीं ना कहीं धन से तो होता है, उसमें भी मनी इन्वॉल्व होता है, तो हमें लगता है कि नहीं ये दोनों एक ही है, जबकि दोनों एक नहीं है। आप बड़े आराम से कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं और समझ भी लिया होगा शायद आपने कि वहां एक फाइनेंस बिल होता है और एक मनी बिल होता है, अगर दोनों एक होते तो दोनों का नाम अलग अलग क्यों होता। हमारे जो मंत्री हैं वो क्या है, वो फाइनेंस मिनिस्टर है, वो मनी मिनिस्टर नहीं है, इसका मतलब है कि वित्त एक बहुत बड़ा हिस्सा है और उसके अंदर धन आता है। तो ये लोग जो है ना धन का इस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं जैसे कि बैंक कर रहे हैं, धन तो कर ही रहे हैं लेकिन बेसिकली ये फाइनेंस करने का काम कर रहे हैं, फाइनेंस से संबंधित हैं। अब जब आप फाइनेंस से संबंधित बात करेंगे तो उसमें धन का लेन देन तो होगा ही होगा, लेकिन बैंक की तरह नहीं। तो फिर ये अब क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं कुछ आपको नाम बता देता हूं तो शायद ये बात और स्पष्ट हो जाए, क्योंकि मुझे मालूम है कि अभी तक आपके दिमाग में चीजें स्पष्ट नहीं हुई होंगी। जैसे बीमा कंपनी, बताइए बीमा कंपनियां क्या करती हैं? आपका बीमा कराती हैं, आपसे हर महीने अब वो बकायदे इंस्टॉलमेंट ले रही हैं और धन ले रही हैं और आपको धन दे रही हैं, तो बीमा कंपनी हो गया। चिटपट फंड भी यही करते हैं। स्टॉक ब्रोकिंग, जो स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, शेयर मार्केट में जो काम कर रहे हैं स्टॉक के लिए, वो क्या कर रहे हैं? वो भी धन का ही लेन देन कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का जो बिजनेस कर रहे हैं वो भी यही काम कर रहे हैं। तो ये जितने भी लोग हैं, देखिए पैसे का ही लेन देन कर रहे हैं लेकिन बैंक का काम नहीं कर रहे हैं, है ना? तो इन्हें हम कहते हैं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। जैसे आइए मैं कुछ कंपनी के आपको चलिए नाम बता देता हूं। ये नाम आपने खूब सुना होगा, खूब एड में भी आता है, बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बजाज फाइनेंस लिमिटेड ये क्या है? ये बजाज कंपनी के द्वारा फाइनेंस करने वाली कंपनियां हैं, यानी कि बजाज कंपनी अपनी एक फाइनेंस लिमिटेड खोल रखी है जो आपके लिए फाइनेंस करती है। अब किसी पर्टिकुलर चीज के लिए ये फाइनेंस करेगी, जैसे एक और है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, श्रीराम प्राइवेट है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, यानी कि अगर आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कोई ट्रक खरीदना चाहते हैं, व्हीकल और दूसरी कोई व्हीकल लेना चाहते हैं, तो आप इस कंपनी के पास पहुंच जाइए, ये बकायदे आपके बिहाफ पर फाइनेंस कर देगी। तो ये है दोस्तों वित्तीय कंपनियां जो गैर बैंकिंग हैं। एक नाम आपने और काफी पहले सुना होगा जिसको लेकर के काफी विवाद भी उठे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज, आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड। अगर आप शहर में घूमेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो कहीं कहीं आपको एक बड़ा पॉपुलर बोर्ड मिल जाएगा, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। तो आप देखिए सब फाइनेंस करने का काम कर रही हैं ये, लेकिन ये बैंक नहीं है। तो दोस्तों यह गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। फॉरेन कंट्रीज में इसके लिए एक बड़ा अच्छा नाम है, वो है शेडो बैंकिंग सिस्टम। शेडो बैंकिंग सिस्टम ये बैंक नहीं है, बैंक की छाया है, यानी कि बैंक की तरह तो लगते हैं लेकिन बैंक बेसिकली नहीं है। तो दोस्तों ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको इसके बारे में दी है। दो तीन जो छोटी छोटी बातें हैं मुझे बतानी हैं, और आज उसके बारे में आपको मैं कुछ न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल कमेंट भी प्रोवाइड कर रहा हूं। एक चुनावी बॉन्ड को लेकर के अभी अखबारों में लिखा जा रहा है, चुनावी बॉन्ड को लेकर के एक विवाद उठा है, हम लोग कभी इस पर अलग से बात करेंगे। खासकर जो विपक्ष के दल हैं उन्होंने चुनावी बॉन्ड को लेकर के सरकार पर कुछ आरोप लगाए हैं कि सरकार किस तरह से चुनावी बॉन्ड का गलत इस्तेमाल कर रही है। इसमें जो सबसे बड़ा जो मुद्दा उठा है वो ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा उठा है कि जो चुनावी बॉन्ड है वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं है। देखिए आप 2000 रुपए से चुनावी बॉन्ड खरीद सकते हैं, उसका रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा, फिर आप किसी भी कंपनी किसी भी राजनीतिक दल को उसे सौंप सकते हैं, वो राजनीतिक दल को भी नहीं पता कि कौन दे रहा है, और बकायदे इस पर जो भी आपको अपने स्टेटमेंट जो आपका इसका होता है इनकम टैक्स का, उसमें आप शो कर सकते हैं। लेकिन पता लगा कि अगर सरकार पता लगाना चाहे तो उसमें ऐसे कोड नंबर होते हैं कि वो पता लगा सकती है कि ये बॉन्ड किसने खरीदे हैं और ये किस राजनीतिक दल को दिए गए हैं। तो ये देखिए अब ट्रांसपेरेंसी का मामला आ गया, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, मैं इसलिए इन दो तथ्यों की बात कर रहा हूं कि ये लेटेस्ट है। दूसरा, आप देखिए कि अभी जो महाराष्ट्र में जो सरकार बनाने को लेकर के जो प्रॉब्लम हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया उसमें उन्होंने क्या कहा कि विधानसभा का बुलाया जाए, अधिवेशन बुलाया जाए और वहां बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा जाए और वो सब कुछ बकायदे कैमरे में हो, बकायदे कैमरे में हो। तो कैमरे में हो का क्या मतलब है कि वहां सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हो, मतलब पब्लिक को पता लगे। तो ये पारदर्शिता की ताकत है, आप देखिए। तो ये दो नए उदाहरण हैं, आपको याद रहने चाहिए ताकि इस विषय पर अगर कुछ भी आप मेंस में लिख रहे हैं तो इनका उल्लेख आप करें। आज मैं आपको एक आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं जो हिंदू अखबार का है, राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में। इस पर मैं हो सका तो आपसे कभी बात करूंगा, लेकिन आप उसे पढ़िएगा कि उसमें मतलब जो मुख्य जो तथ्य है वो यही है कि राज्यपाल का भी जो कार्यकाल है वो बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, कि 5 साल है, 3 साल है, जो भी है, लेकिन इससे पहले उनको नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि अभी राज्यपाल पूरी तरह से राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करते हैं। राष्ट्रपति जब भी चाहे उनको हटा सकते हैं, और इसीलिए राज्यपाल कमजोर हो जाते हैं, वो इस बात के लिए मजबूर हो जाते हैं कि केंद्र जो भी चाहे या वहां से जो निर्देश मिले उसका वो ज्यों का त्यों पालन करे, और अगर वो पालन नहीं करेंगे तो उनको हटा दिया जाएगा। तो उनकी रीढ़ की जो हड्डी है वो ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाती है, तो उनकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि उनके भी कार्यकाल को निश्चित किया जाए। इस तथ्य को लेकर के ये आर्टिकल लिखा गया है। दोस्तों अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और मुख्य विषय है गठबंधन की सरकार, कॉलिशन गवर्नमेंट। और खासकर ये मैंने विषय इसलिए चुना है क्योंकि आपने न्यूज में सुना कि कल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, और इन्होंने जो सरकार बनाई है बेसिकली यह 3 राजनीतिक दलों के गठबंधन से बनी हुई सरकार है। आप जानते हैं एक है एनसीपी, दूसरी है कांग्रेस और तीसरी है शिवसेना। तो शिवसेना इसमें सबसे बड़ी पार्टी है, मतलब जो एमएलए की दृष्टि से जो चुनकर आए हैं, और इसके बाद फिर एनसीपी और फिर ये कांग्रेस है, 3 लोगों ने मिलकर बनाई है। देखिए अगर आप संख्या की दृष्टि से हम बात करेंगे तो बिल्कुल सही है, कोई कहीं कोई असंवैधानिकता उसमें नहीं है, और तभी सरकार बनी भी है। अब उन्हें अपना बहुमत सिद्ध करना होगा, वो बहुमत सिद्ध करेंगे, और बहुमत सिद्ध करने के बाद सीधी सी बात है कि पूरी तरह से उनकी सरकार की जो संवैधानिकता है वो स्थापित हो जाती है। लेकिन इसमें देखिए जब हम गठबंधन सरकार की बात करते हैं तो 2-3 इश्यूज हमारे दिमाग में आने चाहिए। पहला तो यह है कि गठबंधन एक ऐसा भी हो सकता है कि चुनावी पूर्व गठबंधन, यानी कि चुनाव से पहले कुछ पार्टियों ने आपस में एक समझौता सा किया, जिसे आप कह लीजिए सीटों का समझौता, कि भाई इन मान लीजिए कि कहीं 50 सीट है तो भाई 50 सीट में 20 सीट पर तुम अपने उम्मीदवार खड़े करो और बाकी 30 सीट पर हम उम्मीदवार खड़े करेंगे, तो इन दोनों में टकराव नहीं होंगे, दोनों एक दूसरे के विरोध में नहीं खड़े हैं, तो एक दूसरे के जो मतदाता है पार्टी को सपोर्ट करने वाले वो दूसरे को दे देंगे। तो ऐसी स्थिति में सच पूछे तो जो चुनावी पूर्व गठबंधन होते हैं वो ज्यादा तार्किक हैं, ज्यादा सही हैं, और यूं कह लीजिए कि लोकतंत्र की आत्मा के ज्यादा अनुकूल हैं, क्योंकि पब्लिक को मालूम है, मतदाता पहले से जान रहा है कि अच्छा मैं इनको वोट दे रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं उनको वोट दे रहा हूं। तो और अगर चुनाव पूर्व गठबंधन को बहुमत मिल जाता है और वो सरकार नहीं बना पाती है तो यहां पर आप थोड़ा सा इस रूप में देखें कि क्या आपको नहीं लगता कि ये मतदाता के साथ किया गया एक तरीके से छल है, धोखा है, आपको दिखाई देगा, क्योंकि वहां आप एक साथ खड़े हुए थे लेकिन अब आप यहां अलग हो गए। इसके बाद फिर है कि गठबंधन की सरकार बन गई दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर, तो अब जब दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर के बनी है तो फिर हमें देखना यह होता है कि सैद्धांतिक रूप से इन पार्टियों के विचारों में कितनी समानता है और कितना विरोध है। खासकर अभी जो महाराष्ट्र की सरकार बनी है उसमें देखिए शिवसेना हिंदुत्व के तथ्य को लेकर चलती है, महाराष्ट्र के बारे में वो मराठी मानुष को लेकर के चलती है, बीजेपी के साथ उसका चुनावी पूर्व गठबंधन था तो वो हिंदुत्व को लेकर चलने वाली है। इधर जो कांग्रेस है और जो एनसीपी है वो एक तरह से सेकुलर को लेकर के चलने वाले हैं। तो इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर शिवसेना एक तरफ है और कांग्रेस और जो एनसीपी है दोनों एक तरफ है, तो यहां आपको एक सैद्धांतिक मतभेद दिखाई दे रहा है। तो क्या यह गलत है? नहीं, गलत इसलिए हम नहीं कहेंगे क्योंकि डेमोक्रेसी में देखिए कि मतदाता ने उनको भी चुनकर भेजा है, एमएलए उन्होंने भी, वो भी किसी न किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब जो डेमोक्रेसी है कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट पर भी आधारित होती है, तो हो सकता है कि शिवसेना जो हिंदुत्व के तथ्य को लेकर के चल रही है अब ये महसूस करने लगी हो कि नहीं नहीं सेकुलर ज्यादा पावरफुल है, तो उसमें भी ये परिवर्तन करने की क्षमता होनी चाहिए एक डेमोक्रेसी में। तो यह भी अपने आप में उस तरीके से गलत नहीं है, लेकिन चुनावी पूर्व गठबंधन और चुनाव के बाद के गठबंधन की हम तुलना करें तो जो चुनावी पूर्व गठबंधन है वो लोकतंत्र के अधिक आत्मा के अनुकूल है। बस मैं ये छोटी सी बात आपके ध्यान में लाना चाह रहा था। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से 3 दोस्तों के नाम हैं, मुकेश यादव महाराजगंज उत्तर प्रदेश से, प्राची दिमरी उत्तराखंड से, और अभिषेक रंजन रांची से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब 2 दिनों के लिए इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करने की आप सबसे इजाजत चाहूंगा। मेरी शुभकामनाएं कि ये 2 दिन आपके बहुत ही ऊर्जावान और बहुत ही प्रसन्नता के साथ बीतें। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।